परिहन्ताण नमो सिद्धाण नमो आयिर्याण नमो वज्जायाण नमो लोये सौवसाहूणम् एषो पञ्च नमो यारो सौव पावपणासनो मङ्गलानं च सव्येषिम् पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम् पंच परमेष्ठी भगवान की अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की संसार में जो आत्म कल्याण करने वाले भव्य जीव होते हैं वे भव्य जीव आत्मा के पथ पर चलने वाले होते हैं। उनको मुख्य रूप से समझने की वस्तु आत्मा है, क्योंकि आत्मा ही समस्त सुखों की उत्पत्ति का स्थान है। समस्त सुखों की उत्पत्ति यदि कहीं होती है आत्मा में, इसलिए धर्म करने वाला व्यक्ति आत्मा को पकड़ के चलता है, उसको पाने की कोशिश करता है, उसको समझने की कोशिश करता है, उसको समझकर उसमें जिंदगी बनाना चाहता है। आत्मा को जानकर आत्मा को कैसे पहचान कर कैसे अपना धार्मिक जीवन बनाए, यह उसका मुख्य विषय होता है। इसलिए इस ध्येय की पूर्ति के लिए, इस संकल्प की पूर्ति के लिए वह एक साधक बन जाता है। सबसे पहले साधक बनने के लिए वो सभी रूढ़िवादों को दूर रखता है, सब प्रकार की अपनी प्राचीन धारणाओं को जो परंपरा से चली आई हों या अज्ञान के कारण से चलती हों या ऐसे वैसे ही कहने से आई हों, उन सब को किनारा करके वह आत्मा को जानने का प्रयत्न जब करने लगता है तो आत्म वस्तु को जानने वाला वह आत्मा और धर्म, ये दो बातें सामने सदा ही चिंतनशील वस्तु रहती है। दो के संबंध में वह सदा सोचता रहता है, क्योंकि धर्म कहीं बाहर से उत्पन्न नहीं होता, धर्म कहीं परंपराओं में जन्म नहीं लेता, धर्म कहीं रूढ़िवादों में उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। धर्म की उत्पत्ति आत्मा है, आत्मा ही उसका केंद्र है, उत्पत्ति स्थान है। तो हम इधर उधर की बातें क्यों करें, इधर उधर की बातें हम क्यों समझे, ये विचार करने लगता है। जब ऐसा विचार आता है तो वह एक साधक बनने की पात्रता हासिल करता है। साधक कौन बन सकता है? तो वही बन सकता है जिन्होंने अपने लक्ष्य में आत्मा और धर्म, ये दो ही बातें रख करके चलता है। उनके सामने सारी परंपराएं दूर रहती हैं, सारी इधर उधर की बातें जो धर्म के क्षेत्र में तथाकथित कही जाती हैं, चर्चा होती है दुनिया में, उन सभी बातों से दूर रह करके ही काम करता है, तब कहीं जाकर के उसका आत्म कल्याण होता। तो सर्वप्रथम वह एक साधक के रूप में अपने जीवन को जब देखने लगता है तो वह निर्लेप हो जाता है, निष्प्रभ हो जाता है। निर्लेप, निष्प्रह, निर्मोहमय जीवन जीने हेतु वह सच्चा जीवन जीने का लक्ष्य बनाकर जीने लगता है। तो उनके सामने तीन बातें आती हैं। जब वह धर्मात्मा बनने के लिए शुरुआत करता है, मैं कैसे धर्मात्मा बनूं, आत्म कल्याण कैसे करूं, और धर्म के बिना आत्म कल्याण होता नहीं है, तो मैं धर्मात्मा कैसे बनूं, ये सामने रहता है चिंतन का विषय। तो वह चिंतन कर करके एक एक बातें सोच सोच करके, समझ समझ करके आगे बढ़ता है। वह जब सोचना प्रारंभ करता है तो उनके सामने तीन बातें सामने आती हैं। पहली बात, उसके लक्ष्य में क्या है, उसके ध्येय में क्या है, किसके बारे में सोचना है, आत्मा के बारे में और धर्म के बारे में, धर्म के जो असली सिद्धांत हैं उनके बारे में वह विचार करना प्रारंभ करता है। तो जब विचार करना प्रारंभ करता है तो पहला विषय यह आता है कि वो श्रद्धा करे। जिस संबंध में जानकारी ली जा रही है उस संबंध में आस्था के साथ ही चलना पड़ेगा। विदाउट आस्था तो आत्म कल्याण होना संभव नहीं है। जब वह धर्म के सिद्धांतों को जानने लगता है कि यही सच है तो अपने आत्मा को उसी तरह से उसके योग्य बनाने लगता है। धर्म के योग्य अपने को बनाना है या जैसे हम थे वैसे ही रहना है, ये महत्वपूर्ण नहीं होता जिंदगी में। जिंदगी में तो जैसे हमें बनना है वैसा होना है, और कैसे बनना है, धर्ममय बनना है, हमको सत्य बनना है, सत्य की मूर्ति बनना है। जब सत्य बनना है, सत्य की मूर्ति बनना है, धर्ममय बनना है, धर्म को समझना है, धर्म के सिद्धांत की जानकारी लेना है, तो उसके प्रति आस्था अवश्य चाहिए पड़ता। विदाउट आस्था कोई काम नहीं होता। इसलिए सारे तीर्थंकरों ने ये बात पहले समझा दी, जैसे आप बनना चाहते हैं उस वस्तु के प्रति आस्था रखो। आस्था के बिना शुरुआत ही नहीं होती, किसी बात की शुरुआत नहीं हो सकती। आस्था से ही चलना पड़ेगा और आस्था करो। तो आस्था किस पर करें? दो ही हैं अपने सामने, एक आत्मा और एक धर्म। और धर्म जो है धर्मात्मा को छोड़ करके होता नहीं। धर्म का आधार स्थान धर्मात्मा है, आत्मा है। धर्म आत्मा में ही होता है और उसको उसमें पैदा करना है। उसमें है वो, लेकिन दोष आ चुके हैं, आवरण आ चुका है, आवरण को हटाना है। अज्ञान आ चुका है, अज्ञान के कारण से हम धर्म से भटक गए हैं। आस्था श्रद्धा समीचीन नहीं है, सही नहीं है, योग्य नहीं है, यथार्थ नहीं है, इसलिए आस्था भटक गई है। आस्था को लौटाना है, अज्ञान को हटाकर ज्ञान को लौटाना है। आचरण भटक गया है, इन दो के कारण से आस्था भटक गई है तो आचरण भी भटक जाता है, ज्ञान भी भटक जाता है। आस्था और ज्ञान ये दोनों एक साथ आते हैं और एक साथ जाते हैं। मिथ्या आस्था आ जाती है तो मिथ्या ज्ञान उसके साथ ही रहता, मिथ्या ज्ञान आया है तो मिथ्या आस्था उसके साथ में नियम से रहती ही है। दोनों एक सिक्के के दो पहलू की तरह हैं, आस्था और ज्ञान। आस्था ठीक है तो ज्ञान भी ठीक है, आस्था गलत है तो ज्ञान भी गलत है। इसलिए कहा जैन दर्शन में सम्यक दर्शन के उत्पन्न होने पर आस्था ठीक हो जाती है, श्रद्धा ठीक हो जाती है, और मिथ्या दर्शन के आने पर, मिथ्यात्व के आने पर आस्था बिगड़ जाती है, ज्ञान भी उसके साथ बिगड़ जाता है। हम जो आस्था करते हैं, आस्था करने से पहले श्रद्धा करने से पहले हम अपना ज्ञान का ही उपयोग करते हैं, दिमाग का ही उपयोग करते हैं, इससे सोचते हैं। तो ज्ञान उपयोग में आ रहा है, पूर्व का जो ज्ञान है वो उपयोग में आ रहा है, वो पूर्व का ज्ञान अगर सत्य की जानकारी रखता है तो सही वस्तु पर आस्था भी कर सकता है, सही जानकारी नहीं रखता है तो भटक जाता है। किसी न किसी वस्तु पर आस्था रख करके चलता ही है वो। जब ज्ञान नहीं रहेगा तो किसी न किसी अन्य वस्तु पर श्रद्धा रखेगा, उसका आचरण बनाएगा, वैसा चलाएगा। और ऐसी अज्ञान अवस्था में जीव को मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये तीनों नियम से होते हैं। वो जिसको मान रहा है वो मिथ्या आस्था है, जिसको वो जान रहा है वह मिथ्या ज्ञान है, और जान रहा है आस्था कर चुका है तो फिर आचरण भी मिथ्या होगा, आचरण भी मिथ्या। इस तरह से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के साथ इस आत्मा ने अनंत काल बर्बाद किया है, आत्मा का कल्याण नहीं कर पाया। हमने अपने को ही धोखा दिया है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या आचरण के माध्यम से। दूसरे को धोखा नहीं होता, किसको धोखा होता है? अपनी आत्मा को ही धोखा होता है। अज्ञान यदि हमारे में है तो नुकसान किसको करेगा? अपने को ही करेगा। और मिथ्या श्रद्धा है तो उसका परिणाम किस पर आएगा? हमारे ऊपर ही आएगा, आत्मा के ऊपर ही आएगा। आचरण मिथ्या है तो उसका परिणाम किसको मिलेगा? आत्मा को ही मिलेगा। तो इस तरह से आत्मा अधर्म करके भी अपने को ही फल पाता है, धर्म करके भी वह अपने को ही फल पाता है। अच्छा करेंगे तो भी हमें भोगना पड़ेगा, बुरा करेंगे तो भी हमें भोगना पड़ेगा। अच्छा और बुरा क्या है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का मार्ग बुरा मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का मार्ग अच्छा है। यहां तक तो ये समझ में आ गया। अब प्रश्न उठता है, एक व्यक्ति जो व्यक्ति जो भव्यात्मा अपने को अच्छा बनाना चाहता है, धर्म के क्षेत्र में हम अच्छे ही अच्छे रहें, धोखे में न रहें, ये यदि चाहता है तो उसके सामने तीन बातें आती हैं। कौन कौन से? साधना के लिए जब वह प्रयत्नशील होकर के साधना क्षेत्र में उतर जाता है तो सबसे पहले उनको पाक्षिक श्रावक बनना पड़ता है, फिर उसे नैष्ठिक श्रावक बनना पड़ता है, फिर उसे साधक श्रावक बनना पड़ता है। मतलब क्या बनना पड़ता है? पाक्षिक का तात्पर्य है अपनी आत्मा को अहिंसा के पक्ष में ही रखना। बहुत बड़ी बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या बता रहे हैं? अपनी आत्मा को किस पक्ष में रखना चाहोगे? अहिंसा। अहिंसा दो तरह की है, भीतरी अहिंसा, बाहरी अहिंसा। जीवों की रक्षा करने से बाहरी अहिंसा धर्म आपको मिल जाता है, और अंतरंग में कषायों को कम करने से, कषायों को दूर करने से अंतरंग हिंसा निकल जाती है और अंतरंग अहिंसा धर्म आपको प्राप्त हो जाता है। ये होता है कि नहीं? स्वाभाविक, लिखने की जरूरत नहीं है। आप एक सीडी ले लो, घर में बैठ करके खूब लिखो, प्रवचन उतार दो, सुनाते समय एकाग्र रहो। ये बातें ऐसी हैं, लिखते समय सुन नहीं सकते, सुनते समय लिख नहीं सकते। सीडी मिलेगी, सब घरों में सीडी प्लेयर है, सीडी बना लो और खूब लिखो, चिंतन मनन करो, बाद में करो ये काम। बहुत अच्छा समझा रहे हैं, उसको पहले दिमाग में बिठाने का कोशिश करो। क्या बता रहे थे? मुझे सूचना देने के लिए उधर जाना पड़ता है। क्या बता रहे थे? हाँ, वह अहिंसा के पक्ष को मजबूत करने हेतु सोचने वाला बन जाता है, विचार करने वाला, चिंतन करने वाला हो जाता है। अनादिकाल से हम हिंसक रहे हैं, अनादिकाल से हम हिंसक ही रहे हैं, अपने आत्मा की हिंसा बहुत की है। बाहरी प्रवृत्ति जब हमारी होती है, बाहरी व्यवहार जब होता है तो जीव मरते हैं। तो उस समय में भी पाप कर्म का बंद करते हैं। उस समय ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत, अंतराय, ये सारे के सारे कर्म बंद जाते हैं, और ये सारे कर्म पुण्य और पाप के रूप में हैं। दो ही प्रकार से, पुण्य रूप में है और पाप के रूप में। अब ये पुण्य और पाप हमको उदय में आकर के कालांतर में फल देगा कि नहीं देगा, कि व्यर्थ जाएगा? हमारा किया हुआ कर्म, हमारे माध्यम से कमाया गया कर्म फल देगा कि नहीं देगा? अवश्य देगा, फल देता ही है, ये सिद्धांत है। जब फल देता है तो हमारे जीवन में सुख दुख आएंगे कि नहीं आएंगे? तो सुख दुख का मूल स्रोत हमारा कौन रहा? हमारे पूर्व में अर्जित कर्म, हमारे ही कर्म हमारे लिए सुख और दुख को देने में निमित्त बनते हैं, और उनका फल हम निरंतर भोगने लगते हैं। जब इन कर्मों का फल को भोगते हैं तो हाय हाय होता है, त्राय त्राय होता है, और फिर दुनिया में इधर उधर भागने लगते हैं, क्या करूं क्या करूं, बहुत संकट, घर में बहुत संकट, भागने लगते हैं। फिर राय देता है एक व्यक्ति, आज शनिवार है, शनिदेव को जाओ और किलो, एक किलो तेल चढ़ाओ,
राय दे दिया।
आ गए देखो यहाँ, यहाँ से संसार पुनः प्रारंभ होता है। यहाँ से मिथ्या तो अज्ञान मिथ्या आचरण पुनः प्रारंभ हो जाता है नया। यदि किसी व्यक्ति ने आपको शनिवार का दिन है और ये तेल चढ़ाने से तुमको ठीक होता है कहता है तो आप बहुत जल्दी मान लेते हैं, मानते इस शर्त पर कि उसने अपने जिंदगी में तेल चढ़ा करके ही सुख पाया है, उसने अपने अनुभव को बता रहा है। तो उसका अनुभव सच्चा है क्या मिथ्या है? वो मिथ्या है, बस इतना ही समझ में आना चाहिए। व्यक्ति जो समझाता है कि इसको करने से ऐसा हो जाएगा, इसको बाहरी करा करके आपको बाहरी क्रियाकांडों में उलझा करके सुखी बनाना चाहता है, ये तीन काल में संभव नहीं। सारे तीर्थंकरों ने यही घोषणा की, सुख की खोज बाहर में नहीं करो, सुख की खोज भीतर में करो। आत्मा को वस्तु बनाओ, आत्मा को चिंतन का वस्तु बनाओ, सोचने का वस्तु है आत्मा, वहां सारी गड़बड़ी है। इस आत्मा ने कर्म को बांधा है और कर्म के फल को स्वयं भोग रहा है। कर्म और आत्मा, कर्म और आत्मा दो के बारे में ही सोचो। जब भी दुख आता है जीवन में दो के बारे में सोचो, आत्मा ने कर्म किया है, कर्म के कारण से दुख आया है। आत्मा ने पुण्य नहीं किया है, पुण्य का फल अभी नहीं मिल रहा है, इसलिए नियम से मुझे दुख है, ये पाप कर्म का फल है। यही सोचने को बताया है तीर्थंकरों ने। कहीं ये कहा है क्या, किसी शास्त्र में पढ़ा है क्या, शनिवार के दिन शनि देवता को शांत करोगे तो तुम्हारे संकट टलेंगे? किसी भी तीर्थंकरों ने कहीं भी, रत्नकरण श्रावकाचार्य इतने बड़े बड़े ग्रंथ हैं, कहीं भी कहा हो तो हे जैनों, तुम जैन हो, मैं आपसे पूछता हूँ, आप तीर्थंकरों के भक्त हैं, तीर्थंकरों की पूजा करते हो, तीर्थंकरों की पूजा करके आप अपना आत्म कल्याण करना चाहते हो, तीर्थंकरों पर विश्वास करते हो, तो यदि सच्चे में तीर्थंकरों पर आपको विश्वास है तो उनके बताए गए सिद्धांतों पर विश्वास करना पड़ेगा कि ये बाजारू व्यक्ति पर विश्वास करना पड़ेगा? वो बाजारू व्यक्ति कह रहा है कि शनि देवता के लिए एक किलो वो चढ़ाओ, क्या तेल, काय का तेल, शेंगा का, शेंगा का तेल। और वो बाजारू व्यक्ति ऐसा कह रहा है तो आप क्या करेंगे? दिमाग में भ्रमित रहोगे क्या? डरोगे क्या? उनकी बातों में आकर के भयभीत रहोगे क्या? हाँ, ये शनि देवता का हो सकता है इसलिए मुझे ऐसा हो रहा है। साहस छोड़ोगे क्या? भयभीत रहोगे क्या? तुम ऐसा भयभीत हो जाओगे किसी काम के नहीं, और संकट में पड़ोगे और पाप बंधेगा, क्योंकि ये कार्य करते समय ही मिथ्या तो कर्म बनता है और वह मिथ्या तो कर्म पुनः अंधश्रद्धा के लिए कारण बनता है, पुनः अज्ञान के लिए कारण बनता है, अंधश्रद्धा के लिए कारण बनता है। भाव ऐसे ही होते हैं, जब जीव मिथ्या तो कर्म को बांध लेता है तो अज्ञान रूप भाव, अंधश्रद्धा रूप भाव और प्रबल हो जाते हैं। उससे पहले से ही नीम का पेड़ था, वो कड़वा था, उसके ऊपर चढ़ गया करेला। बाजारू व्यक्ति के बात को सुनोगे तो करेले का वेल और चढ़ा दोगे, और तीर्थंकरों की बातों को सुनोगे, उन पर विश्वास करोगे तो नीम का पेड़ भी मीठा बनने लग जाएगा। करेले के बेल को तो उतार ही दोगे, नीम का पेड़ भी मीठा बन जाएगा। एक बार की बात है, हम विहार में थे और रास्ते में एक अद्भुत घटना देखी। एक किसान का खेत था और उस किसान ने क्या किया था, अपने खेत के किनारे पर रहने वाले एक पेड़ जो नीम का पेड़, उससे उन्होंने एक मटका बांध रखा था और उस पेड़ के अंदर एक नली घुसेड़ दिया था। और उस नली से सफेद सफेद कुछ द्रव, किस पेड़ से? नीम के पेड़ से सफेद सफेद कुछ द्रव, क्या हो गया था कुछ पता नहीं, उसमें क्या विशेषता आ गई थी कुछ पता नहीं, उसमें नली घुसेड़ करके रखा था और उस मटके में बूंद 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 करके उसका द्रव झड़ता था, उसको इकट्ठा करके वो सबको बांटता था। कड़वा नहीं था वो, शक्कर जैसा मीठा। देखिए आप प्रकृति में क्या क्या रहस्य हैं, कैसे कैसे चमत्कार हैं, कोई पता नहीं है। ये एक नीम का पेड़, उससे शक्कर जैसा मीठा वो झर रहा है, द्रव झर रहा है, और उसको पीने से चर्म रोग सब ठीक हो जाते थे, उसको पीने से चर्म रोग ठीक होते थे, और बहुत से लोग वहां से उनकी औषधि ले जा रहे थे। ये कौन सा चमत्कार? ये प्राकृतिक है, नेचुरली है, ये किसी ने बनाया नहीं। ऐसी कुछ प्रक्रिया पेड़ में हो गई होगी, कड़वे परमाणु मीठे के रूप में कन्वर्ट होने लगे और वो मीठे परमाणु औषधि के रूप में कन्वर्ट होकर के किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति उस औषधि को स्वीकार कर लेता है तो उसको शारीरिक बीमारियां सब ठीक होने लगी। ऐसा हुआ था। हमारा पेड़ भी कड़वा ही है, अनादिकाल का नीम का पेड़, ये मीठा बन सकता है क्या? नहीं। इसमें तो सफेद सफेद कुछ झर सकता है क्या? नहीं, अवश्य झर सकता है। वो सफेद क्या है झरने वाला? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का झरना, बूंद 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 झरने लग जाए इसी कड़वे पेड़ से। अनादिकालीन आत्मा यह नीम के पेड़ की तरह एकदम कड़वा है, इसमें से मीठा झर सकता है, ये ताकत है इसमें और झर सकता है। इसलिए हमें कुछ भरोसा करना है। अब बहुत हो गया मिथ्यात्व करते करते, सब किनारा करो इन बातों को। अब आत्म कल्याण का सोचो, जिंदगी में कैसे जीना, भयभीत होकर के जीना क्या, निडर के साथ साहस के साथ जीना, ये कला सीखो। तीर्थंकरों ने यही कला सिखाई, उनके उपदेशों के माध्यम से हमारा भय, हमारी लज्जा, हमारा अज्ञान, हमारा पापाचरण, हमारी अनास्था मिथ्यास्था, ये सब दूर होने लायक उपदेश दिया। कैसा अमृत दिया है उन्होंने, उस अमृत को हम एक बार भी पिएंगे, एक जन्म में एक बार भी पिएंगे तो तीर्थंकर ये गारंटी दे रहे हैं, यह जीव अर्धपुद्गल परावर्तन काल के बीच में नियम से मोक्ष प्राप्त करेगा, गारंटी। एक बार तीन चार बूंद भी झर जाए इस कड़वे पेड़ से, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, एक बार सरक जाए वो और वो मीठे के रूप में झरने लग जाए। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र ये कड़वा है और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र अमृत के बूंद हैं, मीठे हैं। ये मीठे मीठा बूंद इस पेड़ से एक बार भी, एक भी बूंद अगर गिरा तो तीर्थंकर कहते हैं उसका कल्याण गारंटी, संसार में रहेगा ही नहीं वो, कितने भव के अंदर, असंख्यात भव। ये तो सामान्य सीमा बंध जाती है, अनंत भव हमारे संसार के नहीं रहेंगे, सीमित हो जाएंगे कहते हैं। कितने सीमित? अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के बीच में नियम से वह मोक्ष जाएगा, 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 ये गारंटी। एक तो सामान्य गारंटी मिल गई, जैसे बाजार में ये कहते हैं ना, कोई वस्तु आप खरीदने के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं मैं आपको सामान लाके दूंगा दूंगा दूंगा, लेकिन एक महीना टाइम दो, एक महीना टाइम दो, क्योंकि एक महीना मुझे लगेगा, जानकारी लेना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा, फिर कैसे माल है ये देखना पड़ेगा। ये एक महीने ठहरो आप, मेरी से गारंटी ले लो, मैं दे दूंगा, मिलना गारंटी है माल। किंतु वह माल एक माह के बाद ही मिलेगा, ऐसा कोई निश्चित कह रहे हैं वो। हो सकता है उससे पहले भी मैं ला करके दे दूं, लेकिन अधिक से अधिक टाइम मांग रहा है वो। कितना? एक महीना। जैसा एक व्यक्ति एक महीना अधिक से अधिक टाइम मांगता है और आपको आठ दिन में ही ला करके दे देता है, तो दो बातें हो गई इसमें। एक तो उन्होंने गारंटी दिया था एक महीने का, और गारंटी देने के पश्चात एक महीने के बाद ला करके नहीं दिया, आठ दिन में ही ला करके दिया। ऐसा हो सकता है कि नहीं कि गारंटी एक महीने का मिल गया तो एक महीने के बाद ही माल आएगा, ऐसा है? यहां पर भी ऐसा है। तीर्थंकर भगवान कहते हैं ये संसारी जीव जिनके पास आज तक एक बार भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र नहीं आया अनंत काल से, उनके लिए गारंटी दे रहे हैं एक सम्यक दर्शन का बूंद टपक जाए इसी आत्मा से, कड़वी आत्मा से। एक बूंद भी टपक जाए तो जिस दिन एक बूंद टपकेगा उस दिन गारंटी देते हैं वो, तुमको कितना समय तक संसार में रहना है, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल। ये अर्ध पुद्गल परावर्तन काल क्या कहलाता है? तो कहते हैं अनंत काल से बहुत छोटा। तो कम से कम इतना तो लाभ हो गया कि अनंत काल तक हम संसार में नहीं रहेंगे और हमारा काल, संसार काल, भविष्य का काल सीमित हो गया। सीमित हुआ कि नहीं हुआ? सीमित तो हो गया। अब सीमित हो गया ये क्या कम है? माल मिलने की गारंटी हो गई तो आपको कितनी बड़ी खुशी होती है एक महीने के भीतर। नहीं, आज ही चाहिए था, लेकिन एक महीने की गारंटी दे रहे हैं। लेकिन एक महीने की गारंटी देते हुए भी आपको आनंद हो रहा है, कम से कम माल तो मिल रहा है ना, ये आनंद आता है कि नहीं आता है? एक महीने के बाद तो कम से कम मिल रहा है, कोई बात नहीं। अब ये भी कह रहे हैं वो एक महीने के अंदर लाके दूंगा, आठ दिन में ला करके दे दिया आपको, मिल गया आपको, हो गया। आठ दिन ये अर्धपुद्गल परावर्तन के समान है, एक महीना अर्धपुद्गल परावर्तन के काल के समान है। और आपको माल मिल ही नहीं रहा था, आप पहले सोचते थे कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप तो मिलने वाला ही नहीं 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 कहते कहते एक कोई व्यक्ति बीच में आया, हे मिल जाएगा, चिंता मत करो। ऐसा होता है कि नहीं जिंदगी में? ऐसा मोक्ष मार्ग में भी होता है। मोक्ष मार्ग में कहते हैं कि आपको अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष तब रहेगा जब सम्यक्त्व की उत्पत्ति हो जाएगी पहली बार, फिर भविष्य में चिंता करने की जरूरत नहीं। अब प्रश्न उठता है, मान के चले वह जो बूंद टपक गया है वो खो गया कहीं और गायब हो गया, तो उस वक्त आप क्या करेंगे? क्या पुनः पा पाएंगे? उस बूंद को तो नहीं पाते जो चला गया, वो तो पर्याय थी, चला गया वो। सम्यक दर्शन उत्पन्न भी हो सकता है और सम्यक दर्शन नष्ट भी हो सकता है। तो नष्ट हो गया, पुनः नीम का पेड़ कड़वा ही बन गया, फिर कड़वी बूंद टपकने लगी, मुसीबत में आ गए। लेकिन तीर्थंकर कहते हैं घबराओ मत, एक बूंद मीठा गिरा है क्या नहीं इतना ही बताओ। कहते हैं तो गिरा है, गिरा यदि है तो प्रतीक्षा करना अर्धपुद्गल परावर्तन काल के बीच में पुनः गिरेगा गिरेगा गिरेगा, ये गारंटी है। अर्धपुद्गल परावर्तन काल के बीच में वही ऐसा ही अमृत बूंद पुनः गिरेगा, और एक नहीं गिरेगा, तीनों बूंद गिरेंगे। तीनों बूंद गिरेंगे इतना ही नहीं, गिर करके आप यहां संसार में नहीं रहेंगे, नियम से निर्वाण को प्राप्त करेंगे। ऐसा नियम है। लोग कहते हैं सम्यक दर्शन प्राप्त करने से हमारे भाव कितने रह जाते हैं, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने से हमारे भावी भाव कितने रह जाते हैं, यानी बच जाते हैं। तो तीर्थंकर भगवान कह रहे हैं अधिक से अधिक अर्धपुद्गल परावर्तन काल बचता है, और इस काल के बीच में आप असंख्यात भाव भी भटक सकते हैं, संख्यात भाव भी भटक सकते हैं। लंबी लंबी उम्र वाली आयु को पाओगे तो कम होंगे भाव, असंख्यात भाव आप भटकोगे, अनंत भाव भटकने की संभावना तो समाप्त हो चुकी है, वो हमेशा के लिए समाप्त हो गई। अब असंख्यात भाव भटकने के बाद असंख्यात ये जो भाव हैं, इन भावों को आप और सीमित कर सकते हैं। कितना? तीन भी रख सकते हैं, तीन, कम से कम तीन, और अधिक से अधिक आठ भी रख सकते हैं। अधिक से अधिक आठ रख सकते हैं और कम से कम तीन रख सकते हैं। कितने थे? असंख्यात। उससे पहले कितने थे? अनंत। अनंत को आपने क्या किया? एक बूंद के माध्यम से असंख्यात बनाया, और फिर आपने विशेष जोर लगाया आत्म तत्व पर। दो ही विषय बताए ना हमने, आत्मा को देखो और धर्म को देखो, शनिवार को और शनिवार वाले को मत देखो। मुख्य आपका ये कल्याण का ये स्थान है, तो दो को देखना प्रारंभ कर दिया आपने। बहुत समय पहले एक बार हमें सम्यक दर्शन हुआ था, कितने करोड़ों वर्ष उसको हो गए, और उस बीच में हमने कई जन्म लिए, कई बार मनुष्य बने, कई बार त्रिंच बने, कई बार नरक गए, कई बार देव बने। करोड़ों वर्ष व्यतीत होने के बाद पुनः मनुष्य बन गए हैं, और मनुष्य बनने के बाद हमें यह पता चला है कि करोड़ों भव के पहले हमने सम्यक दर्शन प्राप्त किया था, और पुनः पेट वड़गांव में महाराज के आने पर सम्यक दर्शन प्राप्त करने की चेष्टा हम करने लगे हैं। पर सम्यक दर्शन ही प्राप्त करने की चेष्टा नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम नैष्टिक श्रावक बनने तैयारी कर रहे हैं, हम महाव्रती मुनि बनने तैयारी कर रहे हैं। यदि ये दोनों बातें और जुड़ जाती हैं, सम्यक दर्शन तो तब प्राप्त हो गया था, अब भी प्राप्त हो गया, अब इस जन्म में एक बूंद झरा टपक गया, एक बूंद तो झर गया है, टपक गया है। अब आप कहते हैं एक बूंद से काम चलने वाला नहीं है, हमको और भी आगे बढ़ना है, प्रयत्न करना है, ऐसा कह करके आप क्या करते हैं? सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के बाद ज्ञान तो उसके साथ आया, अब चारित्र की ओर आप बढ़ना चाहेंगे। क्या बनेंगे? मुझे नैष्टिक श्रावक कैसे बनना चाहिए, ये देखना चाहोगे। पर नैष्टिक श्रावक बनने के बाद साधक श्रावक कैसे बने, ये भी विचार करोगे। अगर ये इन दो बातों से आप जुड़ गए, नैष्टिक श्रावक बनना और साधक श्रावक बनना, इन दो बातों से इस जन्म में जुड़ गए, तो पुनः गारंटी देते हैं तीर्थंकर भगवान। क्या दे रहे हैं? कितने भाव रह जाएंगे अब? कम से कम तीन, और अधिक से अधिक आठ भाव आपके नियम से रहेंगे। यानी आठ भाव के बाद आप किसी भी गति में ढूंढने पर भी नहीं मिलने वाले, आपकी आत्मा चार गति में कहीं भी मिलने वाली नहीं है। न नरक में मिलेगी, न स्वर्ग में मिलेगा, न तिरंच गति में, न मनुष्य गति में। कहाँ रहेगा फिर? सिद्धालय में सिद्ध भगवान बनकर रहेगा, अनंत सुख का अनुभव करता रहेगा। और उस सिद्ध परमेष्टि को यहाँ रहने वाले चार गति में रहने वाले जीव नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम के आपको कहते रहेंगे। आप सिद्ध भगवान रहेंगे और आपको सारे संसार में भ्रमण करने वाले जो चार गति के जीव हैं, वही तो शरण है। तब आप मंगल रहेंगे और ये मंगल पाठ बोलेंगे, चतुर्य मंगलम अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम। आप सिद्ध, आप ही आ गए उसमें। सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, हाँ जब आप साधु थे उस समय मंगल थे, उनके लिए नमन कर रहे हैं। केवली पन्नतो धम्मो मंगलम, हाँ जो पेट वड़गांव में सिखाया जा रहा था अहिंसा आत्म तत्व, ये केवली प्रणीत धर्म, ये मंगल है। इस लोक में सदा मंगल है, केवली भगवान प्रणीत धर्म वो आत्म धर्म है, वो अहिंसा धर्म है। दो प्रकार की हिंसा छोड़ने से दो प्रकार की अहिंसा की उपलब्धि होती है। बहिरंग हिंसा छूट गई तो बहिरंग अहिंसा धर्म प्राप्त हो गया, अंतरंग हिंसा छूट गई तो अंतरंग अहिंसा धर्म प्राप्त हो गया। इन दोनों का मिलान होने पर कर्मों का नाश होना प्रारंभ होता है। अनादिकाल से कमाए गए जो कर्म हैं वो सब नष्ट होने लगते हैं, पिघलने लगते हैं। धर्म को धारण किए बिना कर्मों का नाश नहीं कर सकते, कर्मों को नाश किए बिना सुख मिल नहीं सकता। सुख किससे मिलता है, कब मिलता है, इस प्रश्न का एक ही उत्तर है, कर्मों से मुक्त होने में ही सुख है और कर्मों से बंद करके संसार में परिभ्रमण करने में दुख है। समझ में आ गया? ये नक्शा है, नक्शा सामने रखा हमने भी। समझ में आ गया? अब क्या करना है? बूंद टपकाना है, एक अमृत बूंद टपकाना है अपने जीवन में, या ये जहर के बूंद जो टपक रहे हैं कड़वे कड़वे। जहर बहुत कड़वा होता है, नीम का बूंद आप पियेंगे तो मरेंगे नहीं, स्वस्थ हो जाएंगे, शारीरिक स्वस्थता आएगी, आत्मिक स्वस्थता नहीं। पर मोक्ष मार्ग में ये जहर की बूंद जो टपक रहे हैं अनादिकाल से, इनको आप यदि दूर करेंगे, इनको झरने नहीं देंगे और इसमें अपना चमत्कार प्रकट करेंगे कि सम्यक दर्शन का बूंद टपकाएंगे हम, तो ये चमत्कार प्रकट हो सकता है कि नहीं? ये आपके लिए पुरुषार्थ अधीन है कि नहीं? आप अपना पुरुषार्थ इस ओर लगा करके वो बूंद पा सकते हैं कि नहीं? तो पा सकते हैं, पाओ, जिंदगी मिली है। बाजार के प्रभाव में बहो नहीं, बाजार में तो कुछ भी है, हाँ मिसल है, वहां बाजार में ही मिसल होता है। तो तीर्थंकर भगवान का यह भोजन मिसल नहीं, ये प्योर फिल्टर शुद्ध परिशुद्ध भोजन है। त्यागी धर्मात्मा अपने जीवन में त्याग मार्ग पर जब कदम रखता है तब वो बाजार का भोजन छोड़ता है कि घर का भोजन छोड़ता है? क्यों? बाजार मिसल, बाजार का भोजन भरोसा नहीं, सब मिसल। परिशुद्ध भोजन वहां नहीं मिलेगा, गारंटी है, क्योंकि वो कि व्यापारी है, तुमको खाद्य वस्तु बांटने वाला व्यापारी है और उसको जैसा भी ये मिलना चाहिए। शुद्धा शुद्धि से कोई मतलब नहीं, हिंसा हिंसा से कोई मतलब नहीं, परिश्रम उनको चाहिए नहीं, आराम से जैसा भी बनता है वैसा बना करके रखें और बेचते हैं और बाजार की वस्तु को जब हम खाते हैं कितना बड़ा नुकसान होता है, शरीर रोगी बन जाएगा उससे। और शरीर रोगी बनेगा तो आप दिन रात आप भी कमा रहे हैं, धन कमाते हैं। गंभीर कोई शरीर में बीमारी हो गई बाजार की वस्तुओं के कारण से तो इसको ठीक करने के लिए कितना खर्च करोगे? महाराज, जिंदगी बचाने के लिए तो कर्जा भी लेना पड़ता है। पैसा सब खत्म हो गया, अब बचने की संभावना तो है लेकिन थोड़ा और खर्च करना पड़ेगा, तो क्या करोगे? दुकान बेचोगे या मकान बेचोगे या तो बैंक में जाकर के कर्जा लोगे? और कर्जा का भी वो गारंटी कैसे देंगे? कोई वस्तु सोना चांदी इत्यादि को पहला रख करके आपको गारंटी देते हैं वो? तो मनुष्य का जीवन इस तरह से दुखी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप संसार से दुखी हैं तो क्यों हैं? बाजार के अनसन चीज खाने से, अशुद्ध चीज खाने से शरीर में भयंकर बीमारियां होने लगी। आपको ये कल्पना में नहीं आती कि रोग क्यों हो गया? नहीं महाराज, महावीर भगवान ने तो कहा है ये तो पाप कर्म के उदय में ही होते हैं। बिल्कुल ठीक कहा है ना, पाप कर्म के उदय में ही होते हैं, बाजार के चीजों को खाने से नहीं होते, है ना? देखो महावीर भगवान ने क्या कहा, बाजार के चीजों को खाने वाला व्यक्ति पुण्य कर्म बांध रहा है क्या पाप कर्म बांध रहा है? अब बताओ वो पाप कर्म बीमारी करेगा कि नहीं करेगा? तो आप ऐसे कैसे सोच रहे थे कि बाजार की चीज अलग है, आत्मा अलग है, कर्म अलग है? कर्म तो अनादि से है, बाजार की चीजों को खाने से हमारा स्वास्थ्य नहीं बिगड़ता, हम बीमार नहीं होते। हम तो अनादि काल से जो पाप कर्म किए हैं उससे बीमार होते हैं, ऐसा है क्या? कोई किसी को भी कुछ बीमारी होती है, गंभीर बीमारी, तो पूर्व कर्म के उदय के कारण से बहुत कम बीमारी होती है शरीर में। जन्म के साथ तो आप ठीक जन्मे थे, स्वस्थ थे, तो स्वस्थ थे का मतलब पूर्व जन्म का पुण्य था क्या पाप था? फिर पुण्य के उदय से तो आपका शरीर स्वस्थ पैदा हुआ है, और पैदा होने के बाद ही तो हमारा शरीर बिगड़ गया है। वो किस कारण से बिगड़ा, विचार करने लायक है ये बातें सभी। जिंदगी को सोच के नहीं जीते हम। बोलो, अभी जो शरीर गंभीर बीमारी में आहत हो गया, बीमारी से घिर गया, ये पूर्व का पाप है क्या वर्तमान का ही है? हैं? इसको वर्तमान कहना पड़ेगा ना। पूर्व का होता तो देखो, जन्म लेते समय ही गर्भ में ही हमारे लिए बहुत सारी बीमारियां, अस्वस्थ शरीर, बच्चे पैदा होते हैं, ऐसे भी बच्चे पैदा होते हैं जो जन्म से ही बीमार रहते हैं, तो वो कहलाता है पूर्व जन्म का पाप। एक बात और कहना चाहता हूं, गर्भ में जब बच्चा रहता है तो उस वक्त शरीर जो उसका बनता है वो स्वयं अपने तरफ से नहीं बनाता, वो माँ जो खाती है रस बनता है, उस रस को ग्रहण करके अपना शरीर बनाता है, रस दूसरे का, और शरीर वह अपना बना रहा है। ये जो शरीर बनता रहता है दूसरे के रस से बनता है। इस प्रकार बच्चे के बीच में और माँ के बीच में परस्पर गर्भ अवस्था में बहुत घनिष्ठ संबंध है। शरीर निर्माण के क्षेत्र में बहुत घनिष्ठ संबंध है। अब सोचो जरा, जब इतना घनिष्ठ संबंध है, प्रारंभिक अवस्था में माँ जो पाप करती है उसका प्रभाव बच्चे पर भी आ सकता है। मतलब क्या पाप करती होगी हैं? माँ क्या पाप करती होगी? ये माँ स्वयं बाजार में जाकर मिसल खाएगी, तो बच्चा ठीक पैदा होगा क्या? ये पूछ रहा हूं मैं, गहराई से पकड़ता हूं कोई भी बात को, कोई भी बात को बिल्कुल मूल जड़ सहित सोचता हूं और सोच सोच करके उपदेश देता रहता हूं। जरा सोचो तो सही, गर्भावस्था में आपका बच्चा जब पलता है उस समय आपको कैसे रहना चाहिए? हाँ, कुछ भी खाना चाहिए? चटक मटक? आप चाहते हैं एक अच्छी संतान हमारे लिए पैदा हो, हमारा बच्चा बहुत बुद्धिमान रहे, बहुत बलशाली रहे, बहुत निरोगी रहे, ताकि उसके लिए ज्यादा देखना न पड़े। अस्पताल 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 अस्पताल, जिंदगी उसी में चला गया, बच्चे को बचाने में ही धन संपत्ति पूरा चला जा रहा है। ऐसा बच्चा तो नहीं चाहिए ना? नहीं चाहिए। लेकिन जिस माँ को क्या खाना और क्या पीना, कैसे रहना यही मालूम नहीं है, वो क्या स्वस्थ संतान को जन्म दे सकती है? ये शरीर जो है ना, एक शरीर का दो शरीर बनते हैं। आत्मा वहां से आती है, शरीर सहित तो आती नहीं, परभव से आई, गर्भावस्था में प्रवेश किया उसने, मनुष्य गति में आया, और आते ही प्रथम सेकंड से लेकर 9 माह तक लगातार वह माँ का खाया हुआ भोजन ही खाता है। माँ ने जो खाया और रस बनाया, उसी रस के परमाणुओं से वो शरीर रचना प्रारंभ होती है। और उसने अनसेंट खाया है, मान लो बच्चे का शरीर कैसे बनेगा? इसलिए डॉक्टर लोग भी कहते हैं गर्भावस्था में क्या खाना, कितना खाना, कैसी वस्तु खाना, राय देते हैं कि नहीं देते? ये राय डॉक्टर ही नहीं देते, हमारे तीर्थंकर भगवान भी दे चुके हैं। हमारे तीर्थंकर भगवान भी दे चुके हैं। क्या दे चुके हैं, किस रूप में दे चुके हैं? बाजार का नहीं खाना, इतना ही कहा उन्होंने। बाजार की वस्तु पर विश्वास नहीं रखना, इतना ही कहा। इससे हमको पूरा समझ लेना चाहिए, डॉक्टर क्या कहता है वो इसमें आ जाता। डॉक्टर तो वो है तुमको बीमारी होने पर कहता है कि बाजार का नहीं खाना, पहले से नहीं खाओ उन्होंने। तीर्थंकर भगवान पहले से ही बचा रहे हैं आपको। तुम रोज मंदिर आते हो ना? आते हैं। तो क्यों आते हैं? अपने जीवन को बनाने के लिए। तो आपका जीवन दो, जीवन दो प्रकार का जीवन है, एक बहिरंग जीवन, एक अंतरंग जीवन। अंतरंग जीवन आत्मा का, बहिरंग जीवन शरीर का। दोनों जीवन को सुखमय बनाने हेतु आपको ये प्रयत्न करना चाहिए कि बहिरंग जीवन सुरक्षित रहेगा खान पान की शुद्धि से, और अंतरंग जीवन सुरक्षित रहेगा मिथ्यात्व से बचने पर और तीर्थंकर भगवंतों के सिद्धांतों का अध्ययन करने पर। दो बातें हैं, इन दोनों बातों से अपने को जीवन बनाना होता है। तीर्थंकर भगवान का कहा हुआ जो अंतरंग पक्ष वाला जीवन है, ये अंतरंग पक्ष वाला जीवन सम्यक रूप है, ज्ञान रूप है, चारित्र रूप है, इस ओर जाओ कह रहे हैं। क्यों जाओ कह रहे हैं? तुमको पाप कर्म से बचना है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के मार्ग से गुजरोगे तो पाप कर्म से बचोगे, पुण्य इकट्ठा होगा। अब वो पुण्य इकट्ठा होगा और पाप कम होगा, पाप आएगा नहीं, तो फिर उसका परिणाम क्या रहेगा? अच्छा रहेगा क्या बुरा रहेगा? सब अच्छा रहेगा। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के पालन से हमारा रिजल्ट ये रहा कि पुण्य आया, पाप पूर्व का भी चला गया, नया पाप जो आना चाहिए था वो नहीं आया, इतना सारा लाभ हो गया। अब जो पुण्य आया है, ये पुण्य हमको बहिरंग रूप से और अंतरंग रूप से सुखी बनाएगा क्या दुखी बनाएगा? सुखी बनाएगा। शरीर भी ठीक रहेगा उसी पुण्य के कारण, आत्मा भी ठीक रहेगा उसी पुण्य के कारण। शरीर स्वस्थ है तो आत्मा को तुम सुख में रख सकोगे, धर्म में रख सकोगे, क्योंकि शरीर माध्यमम खलु धर्म साधनम। शरीर माध्यम है धर्म साधन का, और यह माध्यम बिगड़ गया तो धर्म भी नहीं होगा। आप गंभीर बीमारी से घिर गए, कैसे सामायिक करोगे, कैसे पूजन करोगे, कैसे दस लक्षण में बैठोगे, कैसे चलोगे फिरोगे? तुम्हारे सांसारिक कार्य भी संकट में आते हैं और धार्मिक कार्य भी संकट में आता है, दोनों बातें हो जाती इसमें। तो आपको मूलतः किस पर सोचना है? धर्म पर। धर्म पर सोचना प्रारंभ किया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान पर, सम्यक चारित्र पर, सदाचार पर, सदाचरण पर सोचना प्रारंभ किया और उसको अपना जीवन बना लिया, धर्म को अपना जीवन बना लिया, तो आपको जिंदगी में संकट आना संभव ही नहीं, ये सिद्ध हो जाएगा। तो देखो, तीर्थंकर भगवान दो तरह से इलाज करते हैं, अंतरंग का भी और बहिरंग का भी। किंतु डॉक्टर आत्मा का इलाज करता है क्या? डॉक्टर ये कहता है क्या पाप कर्म के उदय से तुम्हारे लिए बीमारी हुई है? ये नहीं कहता। पाप और पुण्य उनको मालूम ही नहीं है। आज के भौतिक विज्ञान को पाप पुण्य का सिद्धांत मालूम ही नहीं है, जो असली सिद्धांत है। असली सिद्धांत से तो आज का विज्ञान बहुत दूर है। शरीर विज्ञान को जानता है और शरीर विज्ञान को जानता है इसलिए कितना कैसा वो व्याख्यान देता मालूम? बाजार की चीजें नहीं खाना। कब नहीं खाना? जब गंभीर बीमार पड़ोगे तब। बीमारी होने तक खूब खा लेना पेट भर। पेट वड़गांव में रहते, पेट में ही रहते, पेट से ही आए, पेट वड़गांव में रहे, पेट भर खाए और बाजार का खाए, अनसंट खाए, खाते रहो। जब बीमार पड़ोगे तो मेरे पास आना, मैं राय दे दूंगा, डॉक्टर कहता है। नहीं तो मेरा अस्पताल कैसे चलेगा? तुम बीमार नहीं पड़ते हो तो मेरे अस्पताल चलेगा कैसे? अस्पताल बंद हो जाएगी कि नहीं? है? दुनिया में जो अस्पताल है किन लोगों के लिए है? जो बीमार पड़ते हैं इन्हीं लोगों के लिए है। और यदि आपने तीर्थंकर भगवंतों की बातों को मान करके धर्म स्वीकार कर लिया तो दुनिया के सारे अस्पताल को ताला लग जाएगा, बंद हो जाएंगे ये। और दुनिया में जितनी लड़ाइयां हो रही हैं, अमेरिका लड़ता है ईरान से, इराक से, और वो लड़ते हैं अमेरिका से, भारत लड़ता है पाकिस्तान से और पाकिस्तान लड़ता है भारत से, ये लड़ाई भी किस कारण से हो रहे हैं? जरा सोचो तो इसकी गहराई में क्या कारण है। क्या कारण है? भारत पाकिस्तान क्यों लड़ते हैं? स्वार्थ, ये स्वार्थ, क्या स्वार्थ है? धरती स्वार्थ। भारत वाला कहता है मेरा धरती मेरा, तुम कौन लेने वाले? पाकिस्तान कहता है अरे तू जिस धरती पर बैठा है कितनी ताकत है देख तो लूं, तेरी धरती हमें छीन की रहना, तुम्हारी धरती को हमें छीन के ही रहना है, भारत को एक दिन पाकिस्तान बना के ही रहना है। आक्रमण, आप आक्रामक नहीं, आक्रामक उधर है। आक्रामक व्यक्ति आक्रमण जब करता है तो लड़ाई प्रारंभ होती है। अब वो आक्रमण कर रहा है उनमें क्या कमी है, और ये जो आक्रमण करना ही नहीं चाहता और शांति से जीवन जीना चाहता है इसमें क्या विशेषता है, उनमें क्या कमी है और भारतीय लोगों में क्या विशेषता है? ये किसी देश पर आक्रमण नहीं करते, ये किसी की छीना झपटी करके जीते नहीं, इनमें विशेषता क्या है ऐसी? ये कभी छीना झपटी करके खाना नहीं चाहते है? हाँ, भारत देश अहिंसा प्रधान और अहिंसा धर्म, यानी मतलब भारत देश धर्म प्रधान, अहिंसा प्रधान का मतलब धर्म प्रधान। इसी अहिंसा सिद्धांत के बल पर हमारा देश स्वतंत्र हुआ है। क्या हिंसा के बल पर हुआ? कई बलि चढ़ गई, आपके वंशज जो पूर्व के थे कई मर गए, मारा नहीं मर गए, और मारने वाला कब तक मारेगा, कितने को मारेगा सोचने के लिए बाध्य होना पड़ेगा कि नहीं? तो गांधी जी ने अहिंसा का सिद्धांत अपना लिया, मरना स्वीकार करो लेकिन हिंसा करके देश को हम हाथ में नहीं लेंगे। आपको लगता होगा अहिंसक लोग कायर होते हैं, लड़ना नहीं चाहते, मरो और देश को ले लो, और मरने के बाद देश हाथ में कैसे आएगा? ये कौन सा सिद्धांत? नहीं, गलत है ये, लड़ना पड़ेगा लड़ना। तो लड़ने का तात्पर्य ये नहीं कि दूसरे की हत्या करो, हत्या स्वयं उनके अपने आप होती है। आपको हत्या करने के भाव रखने की जरूरत नहीं, वो हत्या करने के लिए यदि आ रहा है तो तुम्हारे बंदूक से टकराना पड़ेगा, यहां से गोली तभी जाएगी जब उधर से गोली आएगी, उधर से आएगी तब इधर से जाएगी, कि इधर से जाएगी तब उधर से आएगी? आक्रामक कौन है, उधर है कि इधर है? सीमा पर, कश्मीर की सीमा पर खड़े भारतीय सेना भी खड़ी है, पाकिस्तान सेना भी खड़ी है, गोली किधर से पहले चलती होगी वहां? आपको मालूम है ना इधर से क्यों नहीं चलती होगी, इसका कभी चिंतन किया है? यही भारतीय नागरिकों का और भारत देश का एक आदर्श है। इस आदर्श को कायम रखा है भारत ने, इधर से पहले नहीं जाएगी। ये हमारी संस्कृति है और सभ्यता है। रावण उधर से छोड़ेगा तो ही इधर से गोली जाएगी, बांध जाएगा। ये सभ्यता रही है। राम आक्रामक है क्या? रावण आक्रामक है? आक्रामक वो है। आक्रामक व्यक्ति नरक गया, युद्ध में तो हिंसा हो गई, लाखों लोग मर गए। राम भी लड़े और रावण भी लड़ा, उनकी सेना भी मर गई और इनकी सेना भी मर गई। दोनों ने पाप किया है। पाप करने के बावजूद भी एक मोक्ष जा रहा है और एक नरक जा रहा है, ये किसका परिणाम है? ये धर्म का ही परिणाम है। धर्म आक्रमण सिद्धांत को नहीं सिखाता, धर्म रक्षा करने के सिद्धांत को सिखाता है। तुम जहां हो अपनी रक्षा करो, अपने को भी बचाओ और आसपास के पड़ोसी को भी बचाओ। भागना नहीं, अपनी जगह को छोड़कर बचने की जरूर चेष्टा करो। अपनी वस्तु को भी बचाओ और अपने आप को भी बचाओ, अपने परिवार को भी बचाओ, अपने देश को भी बचाओ। अपनी चीज से अनुराग रखो। किस लिए? तुम्हारी चीज जा रही है और तुम्हारी चीज जा रही है तो ऐसे कायर होकर के बैठने का सिद्धांत भी तीर्थंकरों ने सिखाया नहीं। अहिंसा सिद्धांत का मतलब ये नहीं कायरों का सिद्धांत। अहिंसा सिद्धांत का मतलब ये है आक्रमण रहित, आक्रमण रहित, आक्रमण विरोधी सिद्धांत। अहिंसा सिद्धांत का मतलब ये नहीं आक्रमण स्वागत सिद्धांत, वो मूर्खों का सिद्धांत, वो यहां नहीं है। आक्रमण करने वाले का विरोध करोगे या नहीं? किस लिए? स्वरक्षा, देश रक्षा, दो के लिए विरोध करोगे कि नहीं करोगे? और वो आक्रमणकारी मर रहा है, आक्रमण करने से पहले ही मारोगे कि आक्रमण करने के लिए जब आता है तब मारोगे? हाँ, हमारी देश की संस्कृति क्या रही है? देश की संस्कृति आने पर मारने की रही है कि आने से पहले ही? आने से पहले नहीं, गलत है। आने से पहले भारत ने किसी को नहीं मारा। राम ने ये कहा, हे रावण, मैं मारने नहीं आया तुम्हें, तो दिख रहा है मुझे सामने, तुम्हारा गला लगा सकता हूं, तुम्हें मित्र बना सकता हूं मैं। हे रावण, तुम्हारे लिए मैं अपना मित्र बना सकता हूं, मित्र ही हो, लेकिन अगर तुम मेरे को शत्रु बना चुके हो तो यदि तुम्हारी दृष्टि में मैं शत्रु ही हूं तो चला ले बाण। राम ने पहला बाण नहीं उठाया। राम ने पहला शस्त्र नहीं चलाया। जब उधर से आया तो इधर से भी गया। उन बाणों में भी अहिंसा सिद्धांत जीवित था। बाण बाण लड़ते रहे आकाश में, व्यक्ति की छाती पर नहीं छोड़ा, शस्त्र शस्त्र लड़ते रहे। जब शस्त्र खत्म हो गए तो फिर पहले व्यक्ति शस्त्र से हार जाता है, शस्त्र से हारने के बाद फिर प्राणों से हार जाता है। मरण अंतिम शरण, शस्त्र खत्म हो गए तो अब लड़ो, फिर भी राम पूछते रहे, तुम्हारे हाथ में से सारे शस्त्र गिर गए, या तो शस्त्र ले आओ या तुम्हारे पास शस्त्र खत्म हो गए, लड़ नहीं सकते तो शरण आओ। और शरण नहीं आना है फिर भी लड़ना चाहते हो तो शस्त्र के बिना लड़ो, जैसे भरत बाहुबली, उसके लिए भी तैयार हैं हम। पर शरण आना है कि मरण स्वीकार करना है, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। हम आक्रमण नहीं करते, हम तुमको मारना नहीं चाहते, तुम मरना ही चाहते हो तो हम अपराधी नहीं, तुम ही स्वतः मरना चाहते हो तो हम अपराधी नहीं, तुम यदि मरना चाहते हो तो हम क्या कर सकते हैं। हाथ में तलवार है, चाहे मेरे हाथ में हो चाहे तुम्हारे हाथ में हो, क्या बिगड़ता है। तुमको मरना ही है तो अपने शस्त्र से भी मर सकते, तुम्हें मरना ही है तो हम अपनी वस्तु को बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, ये जो तलवार पकड़ करके रखे हैं इसे टकराओ, हम मारेंगे नहीं, टकराओ इससे। ये भारतीय संस्कृति, यहां तलवार में भी अहिंसा जीवित है, ये तलवार हिंसक नहीं, तलवार से टकरा करके उसे मरना पड़ेगा, मरना चाहे तो मरना पड़ेगा, नहीं चाहता है तो तलवार तक सामने आ जाए, वापस लौट जाए, मारेंगे नहीं। सत्वेषु मैत्री सिद्धांत सिखाया है तीर्थंकरों ने, दुनिया में जितने भी जीव हैं ये सब हमारे मित्र हैं, शत्रु कोई भी यहां नहीं है। दूसरे को शत्रु समझना ये मूर्खता है, अज्ञानता है। ज्ञानी देश, देश यदि ज्ञानी है तो वहां पर रहने वाले भी तो ज्ञानी होंगे ना। ज्ञानी देश में ज्ञानी लोग जो रहते हैं वे आक्रामक नहीं रहते, ज्ञानी आक्रामक होता ही नहीं, आक्रामक वही होता है जिसके अंदर अज्ञान पल रहा है, जिसमें दुराशा पल रही है, जिसमें दुराचार पल रहा है, जिसमें व्यसन पल रहे हैं, जिसमें अधर्म पल रहा है, जिसमें अंधता पल रही है, अंधविश्वास पल रहा है, जिसमें जिंदगी क्या है यही पता नहीं है, ज्ञान नहीं है, अज्ञान पल रहा है, वहां पर आक्रामक बुद्धि होती है, आक्रामक बुद्धि। और जहां पर अहिंसा रहती है वहां ज्ञान रहता है, जहां ज्ञान रहता है वहीं अहिंसा होती है। अहिंसा और ज्ञान ये दोनों जिस व्यक्ति में रहते हैं, और वह व्यक्ति जिस देश में रहता है वह देश अहिंसक देश, और वह व्यक्ति अहिंसक व्यक्ति, वह व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति, वह व्यक्ति रत्नत्रयधारी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, अहिंसा का रूप है ये तीनों। ये अहिंसक लोग जहां रहते हैं वो धर्म का देश, और ये धर्म का देश जहां है इस धर्म का बाल बंका कोई नहीं कर सकता, तब तक जब तक कि अभी पंचम काल पूरा नहीं होगा, साढ़े 18,000 वर्ष तक इस धरती पर मुनि भी रहेंगे और श्रावक भी रहेंगे। 18,500 वर्ष तक महावीर भगवान ने भविष्य भी बता करके वो चले गए, भविष्य भी बताया। 18,500 वर्ष तक ऐसे ही सच्चे श्रावक रहेंगे, आज जैसे पेट वड़गांव में हैं, समर्पित हैं धर्म से। प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, धर्म है क्या नहीं तुम देख लो जीवन में। ऐसे ही धर्मात्मा लोग पेट वड़गांव में रहेंगे, 18,500 वर्ष तक यहाँ वंशज धर्मात्माओं का वंशज रहेगा। अगर धर्म की रक्षा करे तो 18,500 वर्ष तक हमारे पेट वड़गांव में धर्म नहीं रहेगा, ये कह सकते हैं? निश्चित रूप से धर्म रहेगा। हम अपने एक वंश को हम सुधार लेते हैं, एक वंश को। आप अपने बच्चों को सुधारिए, बच्चे को धर्म पढ़ाइए, धर्मात्मा बनाइए, वो धर्म 100 साल तक टिकेगा। बचपन में बीज पड़ना चाहिए बच्चों में। अभी आंखें नहीं खोल रहे हैं आप लोग, सुन रहे हैं कि नहीं कान? धर्म कहाँ टिकाना है? तुम्हारे पश्चात कौन इस पेट वड़गांव में, ये हम पूछ रहे हैं। धर्म रहित तुम्हारा रूखा सूखा बच्चा, रूखा सूखा तो है वो, रहेगा क्या? धर्म सहित हरा भरा बच्चा ये पेट वड़गांव में रहेगा? तुम्हारे बाद कौन उत्तरदायी, उत्तरवर्ती क्या बोलते, उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी कौन? तुम धर्मात्मा बन गए, प्रवचन सुन लिया, ज्ञान प्राप्त कर लिया, बहुत अच्छा है, रोज आ रहे हैं, वो भी कहने से प्रशंसा नहीं कर रहा हूं। रोज आने लगे, बहुत अच्छी बात है, सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, ज्ञान बढ़ता जा रहा है। ज्ञान ही तो सर्वस्व है जीवन का, विदाउट ज्ञान का व्यक्ति अंधा है, अंधा। उसके जीवन में संस्कार नहीं आ सकते धर्म के। घर में बैठेंगे तो धर्म के संस्कार नहीं आ सकते, ये तो सुनना पड़ेगा, रोज अध्ययन करना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा। लोग तरसते हैं प्रवचन के लिए, प्रवचनों में संस्कार मिलते हैं, जिंदगी बनती है प्रवचन से। और जिसको ये प्रवचन की महिमा मालूम नहीं, ज्ञान की महिमा मालूम नहीं, धर्म के ज्ञान की महिमा मालूम नहीं, वो मक्खी उड़ाते हुए बैठे रहते हैं दुकान में और मकान में, बेकार है उनकी जिंदगी, व्यर्थ है। ऐसा जिंदगी जीने से अच्छा है कि गधा बन करके जन्म लेते तो बहुत अच्छा, डुक्कर बन करके जन्म लेते तो बहुत अच्छा, मनुष्य पर्याय मिला, तीर्थंकरों का कुल मिला, उच्च कुल में पैदा हो गए और धर्म से इतनी उदासी, किसने पैदा किया तुमको, किसने पैदा किया, कैसे होंगे वो माता पिता? दुर्बुद्धि, जन्म लेना देना नहीं चाहिए था इसको, जो अपनी संस्कृति धर्म और जीवन को नहीं समझता, कैसा व्यक्ति, कैसा जीवन, कैसी सोच, बहुत संभाला है। तीर्थंकरों ने भारत को 42,000 वर्ष कम, 1 कोटा कोटि सागरोपम वर्ष तक संभाला इस देश को। साधु संतों ने ही भारत को संभाला है। आज जो आप पानी पी रहे हैं, ये साधु संतों का पानी है। आज जो आप अनाज खा रहे हैं, साधु संतों का अनाज। मतलब ये कह रहा हूं कि उस अनाज में अहिंसा जीवित है, अहिंसा की संस्कृति पल रही है इस पानी में, इस मिट्टी में और इस अनाज में। कौन सी संस्कृति है? अहिंसा है कि हिंसा है? अगर हिंसा होती ना तो पाकिस्तान में और भारत में कोई अंतर नहीं होता आज। अज्ञान का जीवन जी रहा है पाकिस्तान, धर्म रंच मात्र नहीं। आक्रमण सिद्धांत सिखाता है कोई देश, कोई भी देश, कोई देश आक्रमण सिद्धांत सिखाता है तो वहां जीवित धर्म जीवित है क्या? नहीं है। भारत कहता है मेरी वस्तु मेरे पास है, मेरा रहने दो, तुम्हारी वस्तु तुम्हारे पास है, तुम्हारा रहने दो, तुम भी सुख से जियो और हम भी सुख से जीते हैं। क्यों आक्रमण करते हो? क्यों हिंसा खून खराबा करते हो? ये दुराशा किस लिए? क्या भूखे मर रहे हो इसलिए छीना झपटी करना चाहते दूसरे की वस्तु? भूखे तो नहीं मर रहे? अरे तुम भूखे हो तो भीख मांगो, हम दे देते हैं। भीख मांगो, भीख भी मत मांगो, इतना ही कहो, गर्व से कहो, मैं एक गरीब व्यक्ति हूं, मैं भीख नहीं मांग सकता, भीख मांग करके मैं खा नहीं सकता, मेरी इज्जत जाएगी। इतना ही कह देना कि मैं आज खा नहीं पा रहा हूं, हम भेज देंगे यहां से। भारत के पास दया है, भारतीय लोगों के पास धर्म है, दया है। ये छीनते नहीं बल्कि भूख से मर रहा हो तो पेट भर खिलाते हैं। ये भारतीय संस्कृति है। इस संस्कृति को तीर्थंकर आदिनाथ से लेकर महावीर तक इन सभी तीर्थंकरों ने जीवित रखा है और आज पेटवड़ गांव में इस संस्कृति को जीवित रखने का समय आया है। अज्ञान का जीवन नहीं जीना, ज्ञान का जीवन जीना। आत्मा को हिंसा में ढकेलना नहीं, अब अहिंसा में रख करके जीवन जीना। बहुत हो गया उस मिथ्यात्व को करते करते, अज्ञान को, अंधविश्वास आदि को पालते पालते, उसको परंपरा समझ रहे थे, उसको धर्म समझ रहे थे, उसमें जमलिंग हो रहा था कि ये ठीक है कि वो ठीक है, वो ठीक है कि ये ठीक। क्या सोच रहे हो? हाँ, जीवन में अंधकार के अलावा क्या था अभी तक? अहिंसक बनना, अहिंसा ही धर्म है। अहिंसक व्यक्ति सबसे पहला अहिंसा धर्म की ओर आने से पहले हिंसा के पक्ष को छोड़ता है। हिंसा का पक्ष आक्रमण पक्ष, हिंसा का पक्ष दुख का पक्ष, हिंसा का पक्ष संकटों का पक्ष। हिंसा के पक्ष को छोड़ने का तात्पर्य ये नहीं कि दूसरे का हम भला करने जा रहे हैं। दूसरे का भला तो अपने आप होता है। आप अपने लिए भला करना प्रारंभ कर दो, दूसरे का भला अपने आप होना प्रारंभ हो जाता है। हम बाजार का नहीं खाएंगे तो बाजार में क्या अशुद्ध चीजें बिकेंगी? सब बाजार के अशुद्ध चीज बेचने वाले बंद करेंगे और शुद्ध चीज बेचना शुरू कर देंगे। आप खरीदते हो, खाते हो, जिंदगी में विवेक नहीं रखते हो, इसलिए उनका बाजार चल रहा है, उनकी दुकान चल रही है। आप नहीं खाएंगे तो वहां पर बिकेगा भी नहीं। आप शुद्ध खाना प्रारंभ कर दो, उधर बाजार वाला व्यापारी अपने आप ठीक हो जाएगा। उसको समझ में आएगा कि लोग माल नहीं खरीद रहे हैं तो केवल इसी के वजह से, क्योंकि हम शाकाहार वस्तु नहीं बेचते, हम अपने यहाँ बना करके शुद्ध वस्तु नहीं बेचते, इसलिए खरीद नहीं पा रहे, मेरा व्यापार भी रुक रहा है। सोचेगा कि नहीं सोचेगा? आप अपनी दुकानों में भी ऐसी चीजें बेचो जो शाकाहार ही हो। शाकाहार वस्तु, शुद्ध वस्तु ही लाओ, और शुद्ध वस्तु बेचो और ये प्रचार करो कि यहाँ पर शुद्ध वस्तु ही मिलती है, अशुद्ध बिल्कुल नहीं मिलता। व्यापार आपका बढ़ेगा। ये धर्म में ताकत है, ये धर्म में ताकत है, क्योंकि इतने लोगों ने यहाँ प्रवचन सुना, मान के चले कि उनका मन परिवर्तन हुआ और उसने वो सब लोगों ने ये संकल्प ले लिया कि बाजार में अशुद्ध चीजें हम खरीदेंगे नहीं, शुद्ध चीजें ही खरीदेंगे। अब उनको मांग तो बढ़ गई, इनकी मांग को पूर्ण करने के लिए आप दुकान रखेंगे तो दुकान घाटे में जाएगा। धर्मात्माओं की संख्या जैसे ही बढ़ती है, दुकान में ऑटोमेटिक शुद्ध चीजें बननी पड़ेगी, बनती हैं। और धर्मात्माओं की संख्या नहीं है इसलिए अशुद्ध बन रही है। सभी मूर्ख हैं, जिंदगी जीना जानते नहीं, क्या खाना क्या पीना, वही खरीदते हैं वही खाते हैं, चल रहा है। डुक्करों का जीवन है ये, सुअरों का जीवन, क्या खा रहे हैं हम वो भी नहीं सोच पाता अपनी जिंदगी के संबंध में। अवक्ष ही खाता है, उसका भोजन ही अवक्ष है। पर मनुष्य का भी भोजन अवक्ष हो जाए तो कीमत क्या रहेगी? कुछ फर्क आ रहा है कि नहीं, कानों में जा रहे हैं कि नहीं वचन, क्या ऊंग रहे हैं? जीवन बनाना है, घर को अहिंसक बनाना है, ये सीढ़ी रखना, लिखना नहीं, घर घर में सीढ़ी रखना, इनको बार बार रुचि से सुनना, ये सबसे बड़ा स्वाध्याय है, ये सबसे बड़ा स्वाध्याय है। ये दिमाग से निकाल लेना, दस लक्षण में हमने उपास किया, नोपी किया, धर्म हो गया। दिमाग से विषय बाहर निकाल लो, इन विषयों को सुन करके अपने आचार विचारों में जो अशुद्धता है उसको ठीक करना प्रारंभ करो, वो सबसे बड़ा धर्म है। सबसे बड़ा धर्म तो वहां है, उसको सुधारना है। समझ में आ रही है? जरा पश्चाताप होना चाहिए भीतर, है? ये पत्थर है कि पत्थर दिल है कि क्या है ये? पत्थर है कि आत्मा है ये? अब क्या क्या रूपांतरण आया अपने जीवन में, कुछ हमारे लिए क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हम कर रहे हैं, आपका प्रवचन सुन करके क्या क्या हमारे जीवन में रूपांतरण आ रहा है, कुछ चिट्ठी तो लिखो मेरे लिए। महाराज आपका प्रवचन हमारे लिए अमृत बन रहा है, आप ऐसे ही सुनाते रहो, हमारी जिंदगी बनती रहेगी। और हमारे जीवन में मैंने अभी अभी ये शुरू किया है, ये छोड़ा है, ये त्याग किया है और मेरा जीवन लाइन पर लग गई है, इतना कुछ लिखो तो सही। हाँ, मुझे परिणाम रिजल्ट कैसे पता चलेगा? तुम कुछ कहोगे नहीं तो मुझे रिजल्ट भी तो चाहिए ना। मास्टर देखता है कि विद्यार्थियों को मैंने साल भर पढ़ाया, रिजल्ट का परसेंट क्या है, देखना चाहेगा कि नहीं? साल भर पढ़ाया, मेहनत किया, इसके पीछे ज्ञान दिया रात दिन एक करके, मास्टर जैसा रिजल्ट देखना चाहता है वैसे साधु भी चाहते हैं कि श्रावक श्रावक बन रहे हैं कि नहीं, देखना चाहेंगे कि नहीं देखना चाहेंगे? क्या केवल धर्म सुनने का और छोड़ने का है? ऐसा तो है ही नहीं। सुनना किस लिए? जीवन बनाने के लिए। तो जीवन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये चिंता वहां जाकर के करते हैं कि नहीं? हाँ? तो क्या क्या आया है, सभी लोग अपने अपने एक स्लिप पर चिट्ठी पर लिखो कि महाराज अपने जीवन में हमने ये छोड़ा, ये त्याग किया है और ये रूपांतरण आया है। और शेष जो है, जो मैं कठिन समझता हूँ अपने जीवन में, उन कठिनाइयों से भी मैं गुजर करके उसमें भी पास होना चाहता हूँ। वो भी एक कोर्स का ही है विषय मेरा, उस कोर्स में भी हम पास होंगे, ऐसा ध्येय रखो। जो होता है जितना होता है उतना तो करना चाहिए और जितना नहीं होता उस पर विश्वास रखना है, श्रद्धा रखना है, कदम बढ़ाना है। ध्येय में रहेगा वो, ध्येय की ओर लक्ष्य रखो और कदम बढ़ाते बढ़ाते जियोगे तो ये जो तीन प्रकार के श्रावक हैं, पाक्षिक श्रावक, नैष्ठिक श्रावक और साधक श्रावक, ये क्या होते हैं ऑटोमेटिक आपको दर्शन होगा। ये प्रैक्टिकल रूप में जीवन में आप देख सकेंगे। अगर ये प्रैक्टिकल तीन प्रकार के श्रावक में से तीनों अवस्था अगर आपने पा लिया तो निश्चित रूप से महावीर भगवान गारंटी दे रहे हैं कि असंख्यात बहुत तो एक बूंद टपकने से आपको बच गए थे। लेकिन अगर प्रैक्टिकली तीनों प्रकार में से एक, तीनों प्रकार का श्रावक आप बन गए तो महावीर भगवान कहते हैं असंख्यात भव आपके अब नहीं है, केवल कम से कम तीन या अधिक से अधिक आठ भव रह जाएंगे। ऐसा तीर्थंकर भगवंतों ने गारंटी दिया है। गारंटी का जीवन जियो, व्यर्थ का जीवन मत जियो। क्यों अज्ञान से भटकते, क्यों इतना उलझ जाते, क्यों इतना चंचल हो जाते, क्यों इतना व्यसनी बनते, क्यों इतना प्रमादी बनते। रोज सुनो प्रवचन, रोज बनाओ अपने जीवन, कुछ न कुछ अपने जीवन में करते रहो, यही जिंदगी का सार है। प्रवचन।